الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. جی آپ بنا دیجئے گا، جب آپ کو جانا ہو تو آپ سارے اس کو ہوس بنا دیجئے گا. تو یہ جو آیات تلاوت کی گئیں آج درس قرآن کے اندر، انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ وغیرہ پڑھنا شروع کریں گے. پچھلی جو ایک آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے معرفت القرآن کی جلد نمبر 6 سے، تو اس کی تھوڑی سی تفسیر رہ گئی تھی، وہ ہم آج پڑھ کے انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں. تو جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلا دیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. تو اس میں جو آخری بات ہم نے پڑھنی تھی آج پیج نمبر 443 کے اوپر، مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات. تو آیت میں فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہو میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے، زمین شام ہے، ٹھیک ہے، حول، ٹھیک ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماحول، ماحول کہتے ہیں ہم اردو میں. تو ماحول جو ہے نا وہ اصل میں عربی کے دو الفاظ ہیں، ما جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، اور حول جو ہے نا وہ اصل میں حول ہے، ٹھیک ہے. تو ماحول کا مطلب جو ارد گرد ہے، جو ارد گرد ہے، آس پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ماحول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی لفظ ہال جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوا کہ ہم نے اس کے جو ارد گرد ہے نا اس کے اندر برکت رکھ دی ہم نے، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر ایک حدیث پر نقل کری کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے، اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے. روح المعانی کے اندر یہ حدیث ہے. سکرین شیئر کرنے انہوں نے ایڈن ہے، انہوں نے اب جانا بھی ہے تو پتہ نہیں انہوں نے اب شاید اس وجہ سے سکرین شیئر نہیں کری ابھی. آپ کھول لیا کریں نا ایک لنک میں، سب کو مطلب میسج میں ہم نے سب کو لنک بھیجا ہوا ہے معرفت القرآن کا، تو وہاں پہ جو جلد نمبر 6 ہے اس کو، سوری جلد نمبر 5 جو ہے وہ، اس کو آپ کلک کر کے کھول لیں. اس کے اندر کیا خیال ہے؟ نہیں کھولنا، سب کام دوسرے ہی کریں، ٹھیک ہے، کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی یہ پتا نہیں ایڈمن صاحب مصروف ہیں آج کسی وجہ سے. تو यानी जो अल्लाह ताला ने अब ये इसकी क्या तहकीक है कि अर्श से लेकर के दरिया फरात तक, तो उसकी तो यानी मौका नहीं मिला इस आज उसको कि ज्यादा इसकी तफसील देख सकें कि अर्श से दरिया फरात तक मुबारक जमीन बनाई है का क्या मतलब है। लेकिन दरिया फरात जो है वो आपको पता ही होगा कि जो यूफ्रेट्स रिवर होता है इराक के अंदर, ठीक है ना, टिग्रेस एंड यूफ्रेट्स इंग्लिश में कहते हैं, तो दजला और फरात उसको उर्दू में या अरबी में कहते हैं। तो फरात है वो एक यानी दरिया है इराक के अंदर, और इसका जिक्र जो है वो हदीस मुबारक के अंदर मुख्तलिफ मुकाम के ऊपर आया है। आखिरी जमाने की भी हदीस जो है कुर्बे क़यामत की, उनमें भी इस दरिया फरात का जिक्र है कि ये खुश्क हो जाएगा और उसके अंदर से जो है वो सोने के पहाड़ बरामद होंगे। तो इराक के अंदर बेसिकली है, तो अब इराक के बिल्कुल बराबर में ही जो है वो शाम की सरजमीन है, और शाम की सरजमीन के अंदर ही जो है वो फलस्तीन का मुल्क है या फलस्तीन की जगह है। तो इसको फलस्तीन को जो है अल्लाह ताला ने एक खास मुकद्दस हैसियत अता फरमाई है, तो इसकी बरकात दीनी भी हैं और दुनियावी भी हैं। दीनी यानी रूहानी बरकात तो ये है कि वो तमाम अंबिया साबिकीन का किबला और तमाम अंबिया का मस्कन वो व मदफन है। तमाम अंबिया का मस्कन यानी उनके रहने की जगह, और मदफन यानी उनके दफन की जगह। तो अंबिया की जो यानी तमाम से यहाँ पर मुराद जो है ना वो अक्सरियत है, ठीक है। जैसे कि एक उसूल आप अक्सर ने सुना होगा, लिल अक्सर हुक्मुल कुल, के अक्सर के ऊपर जो है वो कुल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अक्सर है क्योंकि एक तो 100% हमें पता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे वो फलस्तीन में मदफून नहीं है, वो तो मदीना मुनव्वरा में मदफून है। और दूसरा हमें हदीसों से भी पता चलता है कि जो मुताफ की जमीन है, काबतुल्ला के गिर्द जो जमीन है ना, मुताफ जहाँ पे तवाफ किया जाता है, तो वहां पर भी 70 का अदद यानी 70 अंबिया कराम मदफून है उस जमीन के नीचे भी, जिसके ऊपर हम चल करके तवाफ करते हैं, ठीक है। और 70 का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 70, या उर्दू का जो है 70 है ना, 70 ये नहीं होता, बल्कि 70 का मतलब होता है कि कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में, जैसे दर्जनों का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, या बीसियों का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब एग्जैक्टली 20 नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि एक बड़ी तादाद है, ठीक है। तो यहाँ पर अंबिया की अक्सरियत जो है वो यानी बैतुल मुकद्दस के अंदर मदफून है, और उसकी तरफ नमाज पढ़ना यानी उसके रुख में नमाज पढ़ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कब्रों को सजदा करना हमें दीन के अंदर सिखाया गया है कि नबियों की कब्रें हैं तो उस तरफ जो है वो रुख करके आप सजदा करें, ठीक है, नहीं। बल्कि किबले का मतलब जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की मुतायन की भी एक सिमत है, ठीक है ना। ना तो हम जो है वो काबतुल्ला की दीवारों को सजदा कर रहे होते हैं, ना तो हम जो काबतुल्ला हमारा किबला है, तो इसका मतलब क्या है कि आप काबतुल्ला के पत्थर हैं उनको सजदा कर रहे हैं, या आप जो है वो जो वहां पर हजरे अस्वद लगा हुआ है तो आप हजरे अस्वद को सजदा कर रहे हैं, नहीं। ना तो हजरे अस्वद को हम सजदा कर रहे होते हैं, ना जो है वो दीवारों को सजदा कर रहे होते हैं, ना जो है हम काबतुल्ला के गलाफ को सजदा कर रहे होते हैं, बल्कि हम तो अल्लाह ताला ने जो सिमत मुतय्यन कर दी, जहां पर अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला अपनी तजल्लियात खासा का नुजूल फरमाना शुरू कर देते हैं, तजल्लियात अल्लाह के अनवारात जिस जगह पे नाजिल होना शुरू कर देते हैं, वो हम तो उन अनवारात को सजदा कर रहे होते हैं, उन तजल्लियात को सजदा कर रहे होते हैं जो कि हमें नजर ही नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। तो कब्रों को वो थोड़ी सजदा कर रहे होते हैं, ना तो पत्थरों का सजदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बैतुल मुकद्दस है तो उसको भी जो है ना वो हम कब्रों की वजह से उस तरफ यानी सजदा नहीं किया जा रहा होता था, जब जब उस तरफ सजदा किया जा रहा होता था तो कब्रों की वजह से सजदा नहीं किया जा रहा होता था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से सब कुछ मुतय्यन हो जाता है, ठीक है। असल इस तो अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो फरमाया के दीनी ये तो हो गई दीनी बरकात, और दुनियावी बरकात क्या है कि उसकी जमीन का सरसब्ज होना और उसमें उम्दा चश्मे नहरें बागात वगैरह का होना है, ठीक है, यानी बड़ी जो है वो जरखेज ज़मीन है वहाँ पर। तो यानी ये जो ज़मीन की जरखेज़ी है वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों का उगना है ना, तो ये दुनियावी बरकत की निशानी है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी ज़मीन है और उन यानी चीज़ों के अंदर से भी जो बेहतरीन फल हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं, वो वहाँ पे पैदा होती हैं। व तीन व जैतून, ठीक है ना, तीन वहां पे पैदा होता है, यानी जो फिग होता है आपकी, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, इंजीर। ठीक है, तो इंजीर जो है वो एक बेहतरीन फल है। ठीक है, बहुत उसके जो है वो यानी तबीयी फवायद हैं, मेडिकल उसके फायदे होते हैं। और जैतून, जैतून ऑलिव्स, ठीक है, और ऑलिव्स जो है वो यानी उसका जो 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 तेल निकलता है, ऑलिव ऑयल, तो वो एक सेहत के लिए बेहतरीन तेल है। वो उसके उसके अंदर वो खराबियां नहीं होती जो कि दूसरे किस्म के तेलों के अंदर खराबियां होती हैं। बहरहाल, तो और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे, तो ये दुनियावी बरकतें हैं। ठीक है, अब दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बेहतरीन फल और फ्रूट और सब्जियाँ और अनाज वगैरह पैदा होते हैं, तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने दुनियावी बरकतें रखी हैं, लेकिन यहाँ पर दीनी और दुनियावी बरकतों को अल्लाह ताला ने एक जगह पर जमा फरमा दिया है। ठीक है, ऐसी खासियत जो है वो दुनिया में किसी और मुकाम को नहीं है। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया कि ऐ मुल्के शाम, तू तमाम शहरों में से मेरा मुंतखब खित्ता है और मैं तेरी तरफ अपने मुंतखब बंदों को पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जमीन के इस इलाके को पसंद किया कि वहां पर अपने मुंतखब चोजन यानी अंबिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनको अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर खास तौर पर पहुंचाया। ठीक है, अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि उनसे पहले जो अंबिया थे वो उनका मुल्क शाम के अंदर होना जो है वो हमें नहीं मिलता तारीख से। यानी नूह अलैहिस्सलाम जो है वो इराक के इलाके के अंदर या बल्कि हिजाज के इलाके के अंदर कहीं होते थे। उसी तरह जो है सालेह अलैहिस्सलाम जो है वो भी जमीन हिजाज के करीब होते थे, और बाकी जो है वो हजरत क्या कहते हैं, सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये सब जो है ना इस तरफ होते थे, अरब का जो इलाका है। ठीक है, इनके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो असल में तो इराक के थे, लेकिन वो आग में फेंक जाने के वाकये के बाद जो है वहां से हिजरत करके शाम के इलाके में आ गए थे, फलस्तीन के इलाके में आ गए थे। ठीक है, और लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, वो भी उनके साथ इसी इलाके के अंदर आ गए थे, और वहां से जो है ना फिर जो अम्बिया का सिलसिला उनसे जारी आगे चला, उनकी औलादों में इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वगैरह, ये फिर इसी इलाके के अंदर आसपास ही रहे। ठीक है, मिस्र में चले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से, फिर उसके बाद जो है वापस इधर आ गए। ठीक है, तो ये जगह अल्लाह ताला ने, अच्छा इसमें यानी एक जगह की इम्पोर्टेंस भी सामने आ जाती है और अल्लाह के नेक बंदों की इम्पोर्टेंस भी सामने आ जाती है। ये दोनों चीजें हैं ना अल्लाह ताला ने बरकत का सबब बनाई है। मसनद अहमद में, जो कि हदीस की एक बड़ी किताब है, उनमें उसमें हदीस है कि दज्जाल सारी जमीन में फिरेगा मगर चार मस्जिदों तक उसकी रसाई ना होगी। ठीक है, यानी इन चार जगहों के अंदर जो है ना वो नहीं दाखिल हो सकेगा जहां पर ये मस्जिदें हैं। वो कौन सी हैं? एक तो मस्जिद मदीना मुनव्वरा, यानी मदीना मुनव्वरा का जो शहर है, ठीक है, तो उसमें हरम मदीना का जो एरिया है, मस्जिद मदीना से यहाँ पे मुराद जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हरम करार दिया, ठीक है, जो कि एक्चुअली असल मस्जिद के बाहर भी बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, दज्जाल जो है वो उस हरम के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, और दज्जाल जो है वो मस्जिद मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। ठीक है, यानी मक्का मुकरमा, यहाँ पे मुराद भी मक्का मुकरमा है, मक्का मुकरमा अल्लाह ताला का हरम कहलाता है। ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज जो है वो आपको जद्दा से आते हैं तो वहां पर जो जो एंट्रेंस है, यहाँ पे किताब वाला मॉन्यूमेंट बना हुआ है हाईवे के ऊपर, वो हरम की बाउंड्री वहां से स्टार्ट होती है, और फिर आप जो है वो मस्जिद आयशा जो है वहां पे हरम की बाउंड्री है, और फिर हुदैबिया भी जो हम सीरत की क्लास के अंदर बच्चों को बता रहे हैं। हुदैबिया जो है वहां पर भी एक हरम की बाउंड्री बाउंड्री है, ठीक है। तो इस पूरे बाउंड्री के अंदर जो है ये दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, मस्जिद अक्सा के अंदर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, ठीक है। यानी मस्जिद अक्सा भी जो है वह दज्जाल की पहुंच से महफूज रहेगी। और मस्जिद तूर, अब मस्जिद तूर में वहां पे कौन सी मस्जिद है? वहां पे है तो वैसे एक कलीसा है बाकायदा, मस्जिद तो वहां पे नहीं, लेकिन यानी तूर का जो जो पहाड़ है, वादी सीना क्या का जो पहाड़ है, ठीक है, के अंदर जो ये पहाड़ है वादी यानी तूर, ठीक है, तो वहां पर भी दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अब ये दज्जाल दाखिल होने से क्या मुराद है कि जो असल दज्जाल जो शख्स होगा ना दज्जाल, ठीक है, वो इन जगहों पर दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दज्जाली भी वहां पे दाखिल नहीं हो सकेंगे, यानी उसके जो पैरोकार हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, जो के दज्जाल के ऊपर ईमान लेकर के आएंगे, वो भी इन जगहों पे दाखिल नहीं हो सकते। नहीं, वो दाखिल होंगे, मस्जिद मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है वो दज्जाल के लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और हदीस मुबारका के अंदर है कि जब दज्जाल आएगा तो फरिश्ते उसको तो दाखिल होने से रोक देंगे, तो वो तो हरम के बाहर ठहर जाएगा, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा के अंदर जलजले के झटके देंगे, ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा जो है एक वॉल्केनिक जमीन है, ठीक है ना, तो वहां पर वैसे भी झटके वटके तो पहले भी आ चुके हैं उधर जलजलों के, तो उस वक्त भी आएंगे जब दज्जाल बाहर बैठा वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब ये जलजले के झटके आए ना, तो उस वक्त जो है वो 70,000 मुनाफिक मदीना मुनव्वरा के अंदर जो मौजूद होंगे, ठीक है, वो निकल के मदीना मुनव्वरा से बाहर भागेंगे, ठीक है ना। वो बाहर भाग करके किधर जाएंगे? मदीना मुनव्वरा से निकल करके आप रियाज भी जा सकते हैं, यानी कसीम के रास्ते पे आप चले जाएं, है ना भाई। भाई जलजले के झटके आए, आप निकल के कसीम चले जाएं, ठीक है ना, आप निकल करके जो है वो यम्बू चले जाएं, आप निकल के जो है वो बदर के रास्ते की तरफ चले जाएं, आप खैबर के रास्ते की तरफ चले जाएं। बहुत सारी जगह है जहाँ पे जान बचाने के लिए आप भाग सकते हैं, लेकिन ये जो मुनाफिक होंगे ये कहीं नहीं जाएंगे। ये किधर भागेंगे? ये सारे के सारे किधर भागेंगे? जहां पे इनका रूहानी पेशवा दज्जाल मौजूद होगा, ये वहां जाएंगे, ठीक है ना। क्यों जाएंगे भाई वहां पर? इसलिए कि ये वहां पे बैठे इंतजार कर रहे थे दज्जाल का, ठीक है, कि दज्जाल यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। फिर वो आ करके जो है वो इनके प्री प्लान्ड एक्टिविटीज को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, जिसके लिए यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे थे इतना अरसे से, ठीक है ना। तो अब वो दज्जाल साहब तो बाहर बैठे हुए हैं, वो तो अंदर पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो जब जलजले के झटके आएंगे ना, तो उस वक्त ये अपनी जान बचा करके अपने बड़े के पास जाएंगे, दज्जाल के पास, ठीक है ना। अगर खाली जान बचाना मकसूद होता तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन जान के बचाने के साथ साथ जो है वो अपने बड़े के पास पहुंचना भी मकसूद होगा इनका, उसके साथ मिलना भी जाके मकसूद होगा। तो ये पहले से मौजूद थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, ठीक है ना, तब जो है जाकर के वहां पे ये पहुंचेंगे ना। फोर्थ कौन सी प्लेस बताई थी आपने? मैंने नहीं बताई थी, किताब में लिखी हुई है। किताब ऐसे सामने खोलना आपकी जिम्मेदारी है ना, अब तो मैं नहीं बताऊंगा। किताब क्यों नहीं खोली हुई सामने? ठीक है जी, आगे चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية ما حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا। ठीक है, आप जरा तकलीफ करें, व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, जिसको जो आप जिसके अंदर हैं आलिमात सालिकात या दीन एसेंशियल्स, तो उसमें जाकर के इसका लिंक तलाश करें, उसको क्लिक करें, स्क्रीन के ऊपर खुलेगी, फिर उसमें जो है वो आप जा करके लिखें, तलाश करें, ठीक है ना, कुछ खुद भी काम कर लिया करें। आगे चले, वातीना मूसा किताब वजालना, और हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब वजालनाहु, और हमने बना दिया उसको हुदा, हुदा यानी हिदायत का सबब, ठीक है ना, यानी जो आपको डायरेक्शन देने वाली चीज होती है ना, उसको कहते हैं हिदायत का सबब, ठीक है। तो हमने उसको बना दिया हिदायत लिबनी इसराइला, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए उसको हमने हिदायत का सबब बना दिया। और क्या उसके अंदर फरमाया? अन के ला तत्तखिदु मिन दूनी वकीला, नहीं बनाओ तुम मेरे अलावा किसी को वकील, ठीक है। वकील किसको कहते हैं? वकील कहते हैं जो कि आपकी मुश्किल के अंदर मदद करता है, ठीक है, जो आपका काम बनाने वाला होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर बनी इसराइल को क्या कहा, बहुत सारे काम कहे, बहुत सारी बातें बताई तौरात के अंदर जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी, ठीक है। लेकिन उनका लुब लुबाब क्या था कि मेरे अलावा किसी को अपना वकील मत बनाना, किसी को अपना कारसाज ना बनाना, ठीक है। मतलब ये कि बुनियादी तौर पर मैं हूं तुम्हारा कारसाज, बाकी अगर तुम किसी को अपना काम करने के लिए कहोगे ना, तो ये मत समझना कि वो खुद से तुम्हारा काम कर रहा है। ये मत समझना कि जिसको भी तुमने काम करने के लिए कहा है वो खुद अपनी मर्जी से तुम्हारे काम बना रहा है, बल्कि वो अल्लाह ताला की मर्जी से तुम्हारे काम कर रहा है, ठीक है ना। असल में तो अल्लाह ताला की जात है जो कि तुम्हारी मदद कर रही है इस बंदे के वास्ते से, ठीक है। तो मेरे अलावा किसी को कारसाज मत बनाना का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के अंदर कभी किसी को जो है मदद के लिए ना कहना, है ना। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मदद के लिए पुकारना, ना अम्मी को मदद के लिए पुकारना, ना अब्बू को मदद के लिए पुकारना, ना जो है वो अपने भाई को मदद के लिए पुकारना, ना जो है अपने बेटे को, ना अपने जो है वो बीवी को, ना अपने किसी को मदद के लिए नहीं, कभी नहीं पुकारना, है ना। ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। अगर ये मतलब होता तो फिर तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, ना ऐसा नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। बल्कि मतलब ये है कि किसी को मदद का असल सबब ना समझना, ठीक है। मुझे ही मदद का सब असल सबब समझना, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा तो मदद होगी, मैं किसी को भी इस्तेमाल कर लूं तुम्हारी मदद करने के लिए, ठीक है। तो पूरी तौरात के जो जो पैगामात हैं उनका ये निचोड़, ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया जुर्रिया, ठीक है। जुर्रियत, जुर्रियत कहते हैं कि जो किसी की औलाद होती है, किसी के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उसके उसके छोटे, ठीक है। जुर्रियत मन हमलना मानू, जिनको हमने सवार किया, जिनको हमने चढ़ाया नूह के साथ, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम को जब तूफान तूफान नूह आया था, सैलाब आया था, तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप जो है ना वो अपने साथ ईमान लाने वालों को भी कश्ती के अंदर सवार कर लीजिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटों को भी कश्ती में सवार किया, बेटियों को भी कश्ती में सवार किया, और जो दीगर ईमान लाने वाले थे इंसान, उन सबको कश्ती में सवार किया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के इस काम को अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि हमने सवार किया नूह के साथ, ठीक है ना। हालांकि अगर आप असबाब के हिसाब से देखें तो नूह अलैहिस्सलाम ने सवार किया था, ठीक है ना, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सवार किया, इसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ के हमने सवार किया, ठीक है। तो क्या मतलब कि नूह अलैहिस्सलाम ने इनकी जान नहीं बचाई, असल में तो जान बचाई अल्लाह ताला ने इनकी, ठीक है, नूह के वास्ते से। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, साथ साथ अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ भी बयान कर दी कि बेशक वो जो था ना वो तो हमारा बंदा था, ठीक है ना, वो तो हमारा हुक्म मानने वाला था नूह अलैहिस्सलाम, और शकूरा, ठीक है ना, और शुक्रगुजार था, ठीक है। हमें हमें जो हमारा मुकाम है वो मुकाम हमें देने वाला था, हमारी अजमत को जो है वो तस्लीम करने वाला था, और हमारे हुक्मों की अताअत करने वाला था, हमारा एक बहुत ही अताअत गुजार बंदा था, अब्दन शकूरा, अताअत गुजार बंदा था, ठीक है। तो ये तो जी इसके इस इन दो आयात का तर्जुमा हो गया, बाकी खुलासा तफसीर भी हम पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने इधर डायरेक्ट मैसेज में एक कुछ पॉइंट लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं कि मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन को ये नहीं पता कि वो यहाँ से निकल जाएंगे और उनकी प्लानिंग बिलाखिर नाकाम हो जाएगी, जैसे हमें हदीस मुबारक से उसका पता चलता है। जी हमें हदीस मुबारक से पता चलता है ना, लेकिन हम तो हदीस मुबारक पर ईमान लाते हैं ना, ठीक है ना, यकीन रखते हैं हदीस मुबारक का, तो इस वजह से हमें पता चलता है, ठीक है ना। लेकिन जो हदीस मुबारक पर ईमान ही नहीं लाता, उस हदीस मुबारक के ऊपर यकीन ही नहीं रखता, तो बेशक उसने पढ़ा हुआ भी हो लेकिन वो तो उस पर यकीन ही रखता ना कि वाकई ऐसा होगा भी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो वो उसको इग्नोर कर देता है, उसके अंदर बताई हुई बातों को वो इग्नोर कर देता है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो यह है कि वो मानता ही नहीं है कि ये हदीस मुबारका भी कोई चीज होती है, उसको इग्नोर कर देता है बिल्कुल, है ना। तो काफिर जो है वो भी हदीस मुबारका पढ़ते हैं लेकिन मानते तो नहीं है ना उसको, ठीक है ना। और दूसरी शक्ल भी हो सकती है जो कि बड़ी खतरनाक शक्ल है, ठीक है ना। ना मानने की एक दूसरी शक्ल भी होती है, वो क्या होती है भाई, ना मानने की दूसरी शक्ल क्या होती है वो, अगर आप बता दें थोड़ा सोच करके। कि आप हदीस को तो मानते हैं कि हाँ जी हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई हदीस है, और है जो हदीस में है वो सच है, ठीक है, ये बात तो आप मानते हैं। लेकिन लेकिन दूसरी शक्ल क्या है ना मानने की, वो ये है कि आप हदीस मुबारका की नहीं अमल ना करना, नहीं जिद और हठधर्मी हर जगह जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। इसकी दूसरी शक्ल ये है कि आप हदीस मुबारका की जो है ना वो अपनी मनमर्जी से तशरीह करते हैं, जिसको कहते हैं री इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस, ठीक है ना। जैसी सहाबे कराम ने हदीस की तफसीर समझी थी, ठीक है ना, जैसे माने जो है वो अकाबरीन उम्मत ने हदीस मुबारका के समझे थे, आप कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता उनकी समझ को, बल्कि मैं खुद से जो है ना वो अपनी एक समझ पेश करूंगा हदीस की, ठीक है। तो ये भी फिर ना मानने की ही एक शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो अब जो है वो आप कह देना कि ये मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह कि जो मुनाफिकीन जो है ना ये जलजले के झटकों की वजह से निकल के बाहर भागेंगे, तो इसका मतलब जो है ना वो ये नहीं होगा कि वो वाकई भागेंगे, बल्कि इसका मतलब जो है वो कुछ और होगा, इसका कुछ और मतलब अजीब गरीब किस्म की जो है अपनी तरफ से कोई तशरीह बना ले, ठीक है ना। तो ओवरऑल उसने हदीस का इनकार नहीं किया कि हदीस तो कोई चीज ही नहीं होती और नबी अलैहिस्सलाम ने तो कुछ बताया ही नहीं, ये सब नहीं कह रहा वो, लेकिन वो जो जैसा कि उस हदीस को उम्मत ने समझा है ना, उस समझ को इनकार का इनकार कर देता है और अपनी तरफ से एक नई समझ बना लेता है किसी चीज की, ठीक है ना। तो ये भी फिर उसको यानी फायदा नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी भी शक्लें मौजूद हैं ना दुनिया के अंदर, तो फिर वो भुगतेंगे उसके बाद इस वाली हरकत को, कि जब दज्जाल साहब जो है ना वो आके खड़े होंगे ना, तो वो फिर भाग करके दज्जाल की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो हदीस को माना ही नहीं था, या हदीस की जो उस तशरी थी उस तशरी को माना ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो खुलासे तफसीर इस आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 का देखते हैं कि और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी। नहीं, अब ये कहाँ से इन्होंने अनम्यूट करके अपने घर का शोर हमें सुनाना शुरू कर दिया, नहीं करना चाहिए ना, अब एडमिन भी नहीं है कि वो तो आपको म्यूट कर देते हैं, मैं म्यूट करता हूँ, है ना, ठीक। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात दी और हमने उसको बनी इसराइल के लिए आलाए हिदायत बनाया, ठीक है, हिदायत का सबब बनाया उस तौरात को। आले आला उस चीज को कहते हैं जो कि किसी चीज का सबब बन रहा हो, टूल बन रहा हो, जिसमें और अहकाम के साथ ये तौहीद का अजीम शान हुक्म भी था कि तुम मेरे सिवा अपना कोई कारसाज मत करार दो, ठीक है, यानी मेरा जो है ना वो कोई शरीक मत ठहरा दो मेरे साथ, कि अल्लाह भी मेरा काम बनाते हैं और दूसरे लोग भी मेरा काम बनाते हैं, ठीक है भाई, काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बनाते हैं, दूसरे लोगों को तो अल्लाह ताला बतौर सबब के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बतौर आला के इस्तेमाल कर रहे होते हैं बस। तो क्या फरमाया कि ए उन लोगों की नस्ल जिसको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, जुर्रिया, ठीक है ना, ये जो जुर्रिया का लफ्ज है ना, ये अल्लाह ताला एक्चुअली इनको पुकार रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना मफूल बन रहा है, यहाँ पे देखें जुर्रिया का जो लफ्ज है ये फतहा के साथ आया, ठीक है, मफूल बन रहा है, तो इसका फाइल किधर है जिसका ये मफूल बन रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला यानी ये क्या कहते हैं एक हर्फ निदा के साथ पुकार रहे हैं, या जुर्रिया, ठीक है, कि ए उन लोगों की नस्ल जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया था, हम तुमसे खिताब कर रहे हैं ताकि उस नेमत को याद करो कि अगर हम उनको कश्ती पर सवार करके ना बचाते तो आज तुम उनकी नस्ल कहाँ होते, ठीक है ना। वो ना बचते तो तुम किधर से आते दुनिया के अंदर, ठीक है। और नेमत को याद करके उसका शुक्र करो जिसकी बड़ी फर्द तौहीद है। क्या मतलब कि शुक्र की जो सबसे बड़ी, यानी शुक्र गोया कि अगर बहुत सारे अफआल का नाम है शुक्र करना, तो उन अफआल के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट फेल है, ठीक है ना, सबसे प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सेट है, एक अगर एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो तौहीद है, ठीक है। तो तुम शुक्र करो, और शुक्र में सबसे पहली चीज है तौहीद। अगर तुमने तौहीद ही को गड़बड़ कर दिया तो फिर बाकी चीजें जो है ना वो सारी की सारी तुम्हारी बेकार हो जाएंगी, ठीक है। जैसे तुम नमाज तो पढ़ते हो, नमाज का जो हुक्म है उस पर तो अमल कर रहे हो, रोजा भी रखते हो, और जो है वो जकात भी देते हो, और हज भी करते हो, और इंसानों की खिदमत भी करते हो, और खाने भी खिलाते हो, और मेहमान नवाजी भी करते हो, लेकिन तौहीद तौहीद को नहीं मानते, शिर्क करते हो तुम, ठीक है। तो ये जितने दूसरे अमाल तुम कर रहे हो ना, जो कि हैं तो शुक्र वाले ही अमाल, लेकिन तौहीद का तुमने तो अमल नहीं किया, तो बाकी सारे अमल भी तुम्हारे जाया हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आखिर में कि और वो नूह अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार बंदे थे, बस जब अंबिया शुक्र करते रहे तो तुम कैसे उसके तारिक हो सकते हो, ठीक है। यानी इतना ज्यादा, यानी अजमत वाले और इज्जत वाले जो जो लोग थे वो हमारा शुक्र करते थे, तो तुम तो भाई तुम क्यों नहीं शुक्र करोगे, और क्या तुम शुक्र किए बगैर वो कामयाब हो सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत समझना कभी तुम। अच्छा, बाकी उन्होंने क्या लिखा, पिछले साल सूरह आराफ आयत नंबर 94 से पढ़ा था कि आज की तारीख में, आज की तारीख में इसमें दो सूरतें बताई थी आपने कि अल्लाह ताला हालात क्यों भेजते हैं कि क्या बंदा रोए। कौन सी दो सूरतें होती हैं जब बंदा रोता है? ये आप कहाँ से, अभी कौन सी तफसीर की क्लास चल रही है, बंदा रोना वाली भाई? वैसे तो के हिसाब से सवाल होना चाहिए। अच्छा, बाकी ये दो सूरतें बताई थी, अल्लाह ताला हालात भेजते हैं कि बंदा रोए, कौन सी दो सूरतें होती हैं जब बंदा रोता है? मुझे आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कि आप एग्जैक्ट क्या पूछना चाह रहे हैं। जब तक हम आगे पढ़ते हैं आप फिगर आउट करें कि आप पूछना चाह रहे हैं। चले आगे, आयत नंबर 4 से लेकर के 8 तक, तो इनको हमने पढ़ना है, उसकी उसका तर्जुमा करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकवैना इला बनी इसराइल फिल किताबे लतुफ्सिदुन्न फिल अर्ज मरतैन वलतअलुन्न उलुवन कबीरा, के वकवैना, और हमने साफ साफ सुना दिया, यानी हमने फैसला कर दिया, हमने कजा कर दी, फैसला कर दिया, इला बनी इसराइला, बनी इसराइल की तरफ हमने ये फैसला करके उनको सुना दिया, फिल किताबे, कैसे सुना दिया, किताब के अंदर लिख दिया उनके लिए, ठीक है ना। यानी उनको जो हमने किताब दी ना, वह आतीना मूसल किताबा, उस किताब के अंदर हमने ये फैसला उनको सुना दिया। लतुफ्सिदुन्न फिल अर्दे, कि तुम जरूर बिल जरूर फसाद करोगे जमीन के अंदर, ठीक है, तुम जरूर बिल जरूर जमीन के अंदर फसाद करोगे, ठीक है। मर्रतैन, दो मर्तबा, वलतअलुन्न, और तुम यानी सरकशी करोगे, यानी जो जो हमने तुम्हारे तुम्हारी लिमिटेशंस बनाई हैं, तुम्हारी हदूद बनाई है ना, तुम उन हदूद से तजावुज करने की कोशिश करोगे, रिबेलियन करने की कोशिश करोगे, बगावत करोगे, ठीक है ना। उलूवन कबीरा, बड़ी बगावत, बड़ी सरकशी, ठीक है, तुम दो मर्तबा जमीन के अंदर फसाद और सरकशी करोगे, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक फ्यूचर की बात बता दी विदाउट स्पेसिफाइंग कि एग्जैक्टली कब तुम ये काम करोगे, यानी 200 साल के बाद करोगे, 400 साल के बाद करोगे, 15 साल के बाद करोगे, ये सब नहीं बताया, लेकिन अल्लाह ताला ने फ्यूचर की बातें अपनी किताबों के अंदर बताई हैं, ठीक है ना, अनस्पेसिफाइड तरीके से। जैसे कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो है वो चीजें बताई हैं, ठीक है। याजूज माजूज का तस्करा जो है वो कुरान मजीद के अंदर है, लोगों की जो नाफरमानी का तस्करा पहले की कौमों का भी है और आगे की कौमों का भी, कयामत का तस्करा है कुरान मजीद के अंदर। तो उसी तरह से तौरात के अंदर भी फ्यूचर की बातें अल्लाह ताला ने उनको बताई थी। मकसद ये होता है कि जो मानने वाले लोग हैं वो संभल जाएं और एहतियात का रास्ता अपना लें ताकि वो उन लोगों में शामिल हो जाएं बगावत करने वालों में, ठीक है। और जो ना मानने वाले लोग होते हैं तो वो तो मानते ही नहीं इन बातों को, वो इन बातों से मुहतात नहीं होते हैं। मानने वाले जो हैं जब उन लोगों की नाफरमानियों को देखते हैं तो उनका ईमान जो है वो मजीद मजबूत हो जाता है कि वाकई परवरदगार ने तो ये बातें बताई थी कि भाई ना मानने वाले लोग आएंगे दुनिया के अंदर, उसका ईमान और मजबूत हो जाता है मानने वालों का। फैजा जा वादु उला हुमा, ठीक है, बस जब आया हमारा पहला वादा, बासना अलैकुम, तो हमने खड़ा कर दिया तुम्हारे ऊपर। बासा या बासू का मतलब क्या होता है, खड़ा कर दिया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने किसी काम के लिए खड़ा कर दिया तो उसको कहते हैं बेअसत। बेअसत का लफ्ज है वो यही है बासा, ठीक है। तो जब हमारा पहला वादा आया यानी जो हमने प्रिडिक्शन कर दी थी ना तुम्हारे इस फसाद के बारे में, तो जब तुमने वो पहला फसाद किया तो हमने क्या किया, हमने तुम्हारे ऊपर जो है ना वो खड़ा कर दिया इबादल लना, ठीक है ना, अपने बंदे, इबादन लना, हमारे बंदे, उली बासन शदीदन, जो कौन थे, बड़ी शदीद फाइटिंग फोर्स थे। बास कहते हैं लड़ाई को, जंगो जिदाल को, बास, ठीक है, शदीद बड़े सख्त किस्म के फाइटर्स थे, ठीक है ना, जंगजू किस्म के लोग थे, उनको हमने तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। उर्दू जुबान में हम कहते हैं मुसल्लत कर दिया हमने तुम्हारे ऊपर, ठीक है। फजासु खिलाल दियार, फिर वो घुस गए तुम्हारे शहरों के अंदर, ठीक है ना। जासू, जासू का जो लफ्ज है ना ये कुरान मजीद में बस इधर ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम उर्दू जुबान में जासूस के लफ्ज से वाकिफ हैं। जासूस, जासूस क्या करता है, वो किसी जगह पे ना अंदर घुस करके जो है ना फिर वहां पे खबरें लेकर के आता है, अंदर घुस जाता है वो, ठीक है। जासूस जो है ना वो बाहर से बैठ करके खबरें नहीं देखता बल्कि वो अंदर घुस करके खबरें लेकर के आता है, जासूसी करना इसको कहते हैं ना, ठीक है। तो वो यही जासूस का लफ्ज, तो वो जो है ना वो घुस जाएंगे। खिलाल, खिलाल का मतलब है जैसे वो टूथपिक को हम खिलाल कहते हैं क्योंकि वो टूथ के अंदर घुस जाता है, ठीक है ना, टूथपिक खिलाल, ठीक है, दरमियान में घुस जाता है ना दांतों के, ठीक। तो दियार जो है वो दार से निकला, दार जो है वो शहरों के लिए घरों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो घुस जाएंगे तुम्हारे शहरों के अंदर, ठीक है। वकान वादम मफूला, और वो एक वादा है जो कि होता ही होना ही है, ठीक है ना, यानी हमने जो मैंने बताया तो ये तो हो नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला को जिस तरह माजी का इल्म है, जिस तरह हाल का इल्म है, उसी तरह अल्लाह ताला को मुस्तकबिल का भी इल्म है, ठीक है। अल्लाह ताला को इल्म है लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो बुराइयों को फोर्स नहीं करते, किसी को मजबूर नहीं करते बुराई करने के ऊपर, ठीक है, किसी को जो है वो नेकी करने के ऊपर मजबूर भी नहीं करते, बुराई करने के ऊपर मजबूर नहीं करते, वो तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है। जो अपने इख्तियार से बुराई करता है उसको फिर सजा मिलती है, जो अपने इख्तियार से नेकी करता है उसको जजा मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन जो है वो बुराई करेगा, कौन जो है वो अच्छाई करेगा, किसके साथ बुराई की वजह से क्या नतीजा होगा, किसके साथ अच्छाई की वजह से क्या मामला किया जाएगा, ये अल्लाह ताला के इल्म में है, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने अपनी किताबों के अंदर अपने उस इल्म को कहीं कहीं जो है वो नकल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी अपने सवाल पे मुसिर हैं, तो उन्होंने लिखा कि दो सूरतों में आपने बताया था बंदा रोता है खुशी में और तकलीफ में, और हालात हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं, अल्लाह रुलाते हैं जब इंसान गुनाह करता है, और जब अल्लाह नेमतें देते हैं तो बंदा शुक्र की वजह से रोता है, एहसानमंद होकर रोता है। तो आपने ये टॉपिक एड्रेस किया था, अभी शुक्र का जिक्र हुआ तो मुझे वो बात याद आ गई, माजत चाहती हूँ कि मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था। हाँ तो भाई कोई बात याद आ जाए तो उसका मतलब ये कि क्लास के अंदर जो है वो उसको छेड़ भी दें जरूर से, ठीक है, तब कोई सवाल है तो वो पूछे ना, वो भी जरा रेलिवेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल चले कोई बात नहीं, आगे चले। तुम रददना लकुमुल अल कर्रा, ठीक है, फिर हमने फेर दी, रददना का मतलब जो है वो लौटा दिया हमने, लकुम तुम्हारे ऊपर, अलकर्रता अलैहिम, ठीक है, कर्रा जो है वो यानी बारी से देते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट किया है उसको, लेकिन जैसे कुर्रा है ना, एक एक सर्कुलर चीज को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 14 अगस्त के हवाले से बताया था, तो अब 14 अगस्त आ गई है तो ठीक। वैसे 14 अगस्त लता ना कुछ करवा ही देते हैं 14 अगस्त को, 15 अगस्त भी, तो अब जो है ना वो 14 अगस्त के जो अहवाल हैं है ना, वे अहवाल जो है वो माशाल्लाह तफसीर के अंदर भी, कि भाई अल्लाह ताला ने जमीन दी बनी इसराइल को भी, तो जमीन दी ना अल्लाह ताला ने, तो बनी इसराइल ने जब तक अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कही वो इज्जत के साथ वो जमीन के अंदर रहते रहे, और जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी तो अल्लाह ताला ने फिर दूसरों को मुसल्लत करके उनको बंटवाया, तो हमें भी अल्लाह ताला ने जमीनें दी हैं भाई, है ना, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें पाकिस्तान के नाम से 14 अगस्त को दी, और 15 अगस्त की जमीन जो है वो दूसरों को दी, ठीक है। तो फिर जो है वो हमने अल्लाह ताला के हुक्म को तो नहीं माना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा करके जमीन तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद फिर ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो तो भूल गए, ठीक है, और उसका जो है वो कुछ भी नहीं किया उसके बाद उसके अंदर, तो दगरगूं हालात जो है वो दिन ब दिन दगरगूं भी हो रहे हैं, और दगरगूं होने की एक शदीद शक्ल क्या होती है कि मानते भी नहीं है कि दगरगूं हो रहे हैं, है ना, आजादी के माशाल्लाह जश्न भी मना रहे हैं, झंडियां भी लगा रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं, जश्न आजादी, आजादी मुबारक, ये वो सब कुछ है, लेकिन आजादी का मतलब ही नहीं पता कि होती क्या चीज है ये, तो अजीब व गरीब किस्म के हालात है, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। तो सुम रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने फेर दी तुम्हारी बारी उन पर, ठीक है, यानी जब तुमने तौबा कर ली ना तो फिर फेर दी तुम्हारी बारी उन पर, वो अमददनाकुम बे अमवाल, और हमने तुम्हारी मदद करी अमवाल से, वह बनीन और तुम्हारी तुम्हारे बेटों से, यानी तुम्हारे जो है ना तुम्हें हमने फिर फाइटिंग मेन अता किए बेटों की शक्ल में, ठीक है, क्योंकि बेटियों का काम जो है ना वो मैदान जंग के अंदर जाना नहीं होता, ठीक है ना, बेटों का काम होता है मैदान जंग के अंदर जाना, तो उन बेटों के जरिए से हमने तुम्हारी मदद करी, ठीक है। वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, और उससे और हमने तुम्हें बना दिया अक्सर नफीरा, अक्सरा का मतलब होता है ज्यादा बड़ी तादाद में कसरत, और नफीर का जो लफ्ज है वो नफर से निकला, नफर नफर कहते हैं बंदों को, ठीक है ना, ये कितने नफर हैं भाई, ये कितने नफर हैं, ठीक है, तो हमने तुम्हारी तादाद जो है ना वो बढ़ा दी, ठीक है ना, यानी तुमने तौबा करी फिर हमने जो है ना वो तुम्हारी बारी उनके ऊपर फेर दी, यानी फिर हमने तुम्हें जो है वो फौकियत अता फरमा दी, तुम्हें जो है वो इज्जत अता फरमा दी उनके ऊपर तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर, ठीक है। तिलकल अमवालु नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये तो अल्लाह ताला के अय्याम हैं कि हम जो है वो इंसानों के दरमियान फेरते रहते हैं, कैसे फेरते रहते हैं कि इंसान जो है ना जब फरमाबरदारी करते हैं हम उनको दुनिया में भी इज्जत दे देते हैं, और जब वो नाफरमानी करते हैं हम उनको दुनिया में भी जलील कर देते हैं, ठीक है, बाकी कयामत के दिन तो अलग हिसाब किताब होगा, लेकिन दुनिया के अंदर भी ये सिलसिला अल्लाह ताला चलाते रहते हैं, तो यही जो है बनी इसराइल के साथ हुआ, ठीक है। तो बनी इसराइल का जो मामला है ना, वैसे तो क्लास का टाइम खत्म हो गया तो बस अब हम मजीद आगे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बनी इसराइल का जो मामला है ना ये देखें दूसरी कौमों के मुकाबले में मुख्तलिफ है, ठीक है, कौम नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, कौम सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी करी, कौम हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, ठीक है, कौम लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, सबके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, इनमें से किसी के ऊपर जो है वो किसी दूसरी कौम को मुसल्लत नहीं किया गया, बल्कि इन सबको अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अजाब दे करके नीस्त तो नाबूद कर दिया, है ना, नूह अलैहिस्सलाम की कौम सैलाब के जरिए से, लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो भी जो है वो चीख और जमीन उखाड़ देना और खत्म कर दी बिल्कुल अल्लाह ताला ने, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी जो है वो भी खत्म हो गई, हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। बनी इसराइल का मामला क्या था कि वो जब नाफरमानी करते थे दुश्मन मुल्क या दुश्मन कौम उनके ऊपर मुसल्लत हो जाती थी, मारती थी, पीटती थी, कत्ल करती थी, गुलाम बनाती थी, माल लूट लेती थी, है ना। फिर जो है ना वो जलील और रसवा होकर के जो है वो बड़े लंबे अरसे तक पड़े रहते थे, बिल आखिर जो है वो तौबा करते थे, ठीक है ना, तौबा करते थे, अल्लाह ताला फिर इज्जत अता फरमा देते थे, ठीक है ना, वही जो हमने अभी पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो जब इज्जत हो जाती थी, मुल्क मिल जाता था, दौलत मिल जाती थी वापस, फिर जो है ना वो कुछ अरसा सही रहते थे, सही रहते, फिर उसके बाद नाफरमानी शुरू, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो बुत परस्ती, तो अंबिया की मुखालफत, तो किसी नबी को कत्ल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, फिर अल्लाह ताला जो है वो काफिर कौम को, है ना। तो ये सिलसिला जो है वो बनी इसराइल का, वहां पर चीख के जरिए से कौम को खत्म नहीं किया, है ना। अगर इस किस्म का कोई अजाब आ भी ना, तो वो कौम के एक छोटे से हिस्से के ऊपर आया, जैसे बंदर बना दिया तो सारे बनी इसराइल को थोड़ी बंदर बना दिया, है ना, सुअर बना दिया तो थोड़े से लोगों को सुअर बना दिया, सबको नहीं बना दिया, ठीक है। यही मामला एग्जैक्टली नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ भी है, ठीक है ना। यही सिमिलैरिटीज हैं मुसलमान यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और ये बनी इसराइल के दरमियान, है ना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के अंदर बनी इसराइल के वाकयात को जा बजा बयान किया हुआ, बिखेरा हुआ है पूरे के पूरे कुरान के अंदर बनी इसराइल के वाकयात को, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोजनेस हमारी जो है वो बनी इसराइल के साथ, ठीक है। तो ये इस उम्मत की इबरत के लिए है कि हम बाज आ जाएं, यानी हम हरकत ना करें, ठीक है ना। लेकिन जो इन बातों को या तो सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो उनके तो मानने की नौबत ही नहीं आती, और जो पढ़ते हैं लेकिन अपनी मन मर्जी की कोई तावील निकाल लेते हैं, अपने जो है वो कुछ और किस्म का जो है वो उसका मकसद बयान कर ले बना लेते हैं, जैसे कि भाई कुरान मजीद जो है ना ये तो बीमारियों की शिफा के लिए है, ठीक है ना, ये तो वजीफों के लिए है, ये तो जो है ना वो किरत की अच्छी अच्छी आवाजें बनाने के लिए है, खाली भाई वजीफों के लिए भी है, दवा के लिए भी है ना, शिफा भी अल्लाह ताला ने रखी है इसके अंदर, इसकी तिलावत जो है इसका भी अल्लाह ताला ने सवाब रखा है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ इसलिए तो नहीं है ना कुरान मजीद, असल में तो ये कुरान हिदायत के लिए, आपने असल मकसद को जो है वो बिल्कुल ही फरामोश कर दिया, और जो 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 सेकेंडरी मकासद थे आपने उनको असल मकसद बना लिया, ये तो फिर इस कुरान की नाकदरी है ना, कुरान की जो है वो नेमत की फिर यानी नऊज़ बिल्लाह तौहीन एक तरह से बन गई ना आपकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको फायदा ही कोई नहीं, कुरान पढ़े चले जा रहे हैं, तिलावत करे चले जा रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं घुस रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, गुनाहों से तौबा कर नहीं रहे, अपनी वही मनमर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला से खुसूसन ऐसे मौकों के ऊपर जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा इबरत के मकाम है, कि देखिए अल्लाह ताला के साथ हमने वादे किए, किसी छोटे बच्चे के साथ तो वादे नहीं किए थे ना हमने कि हमें जो है वो मुल्क मिलेगा, आजादी मिलेगी, फिर जो है ना आपका निजाम यहाँ पर नाफिज करेंगे, ये कोई छोटे बच्चे से आपने वादा किया था, राइट, ये कोई आपने अपने पड़ोसी से वादा किया था, ये आपने किससे वादा किया था, ये आपने अल्लाह ताला के साथ वादा किया था, तो भाई सोच समझ के वादा करना था ना, कोई मजाक तो नहीं था कि अल्लाह से वादा कर लिया और उसके बाद जो है वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। तो अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक ता फरमाए, वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि।